बोलो ना मधु।
नहीं, मैंने भी कह दिया कविता।
मधु,
तुम समझती क्यों नहीं हो? कविता।
मैंने भी कह दिया मधु।
नहीं, कविता तो कविता।
अरे रे रे, चित्रा, संगीता, ये किस बात पर बहस हो रही है?
अच्छा हुआ बौजी जो आप आ गई। देखिए ना, मैं संगीता से कब से कह रही हूँ कि शहर की और नाटक में मधु ज्यादा अच्छी है, हमें उसकी तरह बनना चाहिए। पर ये संगीता मेरी बात मानती ही नहीं, कहती है कविता ज्यादा अच्छी है, हमें उसकी तरह बनना चाहिए।
हाँ भौजी, अब आप ही बताइए हमें किसकी तरह बनना चाहिए।
ओह, तो ये बात है भाई। मैं तो कहूँगी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, और जो भी इंसान हमें अच्छा लगे, जिसके विचार अच्छे लगे, हमें उसी के आदर्शों को अपनाना चाहिए। अब अगर चित्रा तुम्हें मधु पसंद है तो तुम मधु की तरह बनने की कोशिश करो, और संगीता तुम्हें कविता पसंद है तो तुम कविता को अपना आदर्श बना सकती हो।
आप सही कहती हैं बौजी, आज से मैं मधु की तरह बनने की कोशिश करूंगी, जो हर परेशानी का डट कर मुकाबला करती है।
हाँ, और मैं कविता की तरह, ताकि मैं शहर में एक अच्छी नौकरी कर सकूं।
लेकिन तुम दोनों अपनी बहस के चक्कर में एक बात तो भूल ही गई।
वो क्या बौजी?
यही कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर शुरू होने का वक्त हो चुका है।
मैं अभी रेडियो चलाती हूँ। प्रोग्राम तो शुरू हो गया।
हाँ हाँ, आप चुप तो कर, सुनने दे।
तक नहीं आया है और प्रोग्राम शुरू होने का टाइम भी हो गया है।
सॉरी अंजलिया, मुझे आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई।
आप आज फिर आ गए, और ये नरेन कहाँ है?
अंजलि, नरेन का फोन आया था, वो आज भी नहीं आ सकेगा।
यानी कि आज भी आप ही मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में?
हाँ अंजलि, रहूंगा तो मैं ही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, देर हो रही है, श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम अपना आज का धारावाहिक चलें शहर की ओर।
चलिए तो ठीक है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, मुंबई में चंदर और गजेंद्र नौकरी के लिए वापिस दयाल पांडे के पास जाते हैं। इस बार दयाल पांडे मेडिकल चेकअप के बहाने उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर गजेंद्र आग बबूला हो जाता है। उधर गांव में मधु बीमार रोशन को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाती है। समय पर सही उपचार मिलने की वजह से रोशन की जान बच जाती है, और फूलमती को जब ये पता चलता है कि मधु की समझदारी की वजह से ही रोशन बच पाया है, तो वो शर्मिंदा होती है और मधु से माफी मांगती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
समझ में नहीं आता आप लोगों ने ऐसे झूठे विज्ञापन पर विश्वास कैसे कर लिया।
राजेश जी, अब जो गलती हो गई उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अब हम उस दयाल पांडे को छोड़ना नहीं चाहते। पता नहीं हम जैसे कितने लोगों को रोज ऐसे ही बेवकूफ बनाता होगा।
अच्छा चंदर, तुम्हारी शुरुआत में उसके साथ कुछ लिखा पढ़ी हुई थी क्या?
नहीं कविता जी, हमारे बीच ऐसे कोई कागजी कार्रवाई तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, हमारे पास वो रसीदें जरूर हैं।
रसीदें कौन सी?
वो जो उसने हमें अंग्रेजी की क्लास और तैराकी क्लास के पैसे लेते वक्त दी थी।
अच्छा, जरा दिखाओ तो।
ये रही, ये लीजिए।
राजेश, इनसे कुछ हो सकता है क्या?
शायद कुछ बात बन जाए। बाकी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तो करनी ही चाहिए, देखते हैं फिर क्या होता है।
ये लीजिए चाय।
अरे माया जी, आपने तकलीफ क्यों की? पहले ही रहने की जगह देकर आप हमारे ऊपर एहसान कर चुकी हैं।
अरे इसमें एहसान की क्या बात है, अब मुसीबत में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। चलिए अब चाय लीजिए,
और चाय पीने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं।
जी जी, ठीक है।
कलम रख ली है, प्रवेश पत्र भी रख लिया है, किताब भी रख ली। हाँ, अब मैं तैयार हूँ।
मधु, सारी तैयारी हो गई ना? सब सामान रख लिया?
जी दीदी, सब रख लिया है। दीदी, आज पहली परीक्षा है, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना।
अरे मधु, तू चिंता मत कर, देखना तेरी परीक्षा अच्छी ही होगी, तूने इतनी मेहनत जो की है।
मीरा दीदी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है।
अरे घबराने की क्या बात है, तूने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है ना, और मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं, देखना सब अच्छा ही होगा।
भगवान करे ऐसा ही हो।
बौजी, आप तैयार हो गई?
हाँ छुटकी, क्यों कुछ काम था क्या?
हाँ, ये आपके लिए।
अरे ये तो बहुत अच्छी कलम है,
मैंने आपके लिए खरीदी है, देखना अगर आप इस कलम से अपनी परीक्षा दोगी तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी।
छुटकी, अब मैं इसी कलम से अपनी सभी परीक्षा दूंगी। अच्छा सुन, वो जूस की 40 और जैम की 2 बोतलें तैयार रखी हैं, उन्हें याद से जरा नीलम दीदी के घर पहुंचा देना।
जी बौजी, मैं याद से पहुंचा दूंगी।
मधु जल्दी करो।
आई चेची।
अच्छा दीदी, मैं निकलती हूँ।
अरे अरे बुआरी
जी माँ जी,
ये ले दही खाकर जा, अच्छा शगुन होता है, ये ले। माँ सुरकंडा तेरी मेहनत सफल करे और तू अच्छे अंकों से पास हो।
अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ।
अच्छा ध्यान से परीक्षा देना। हाँ
जी माँ जी।
अरे वाह राजेश जी, पुलिस स्टेशन में हमारी शिकायत तो बड़ी आसानी से दर्ज हो गई।
सच बताऊं तो राजेश जी, मुझे तो पुलिस स्टेशन के नाम से ही डर लगने लगता है।
चंदर, पुलिस को सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए रखा है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, और वैसे भी पुलिस का रवैया बुरे लोगों के साथ बुरा और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है।
ऐसे राजेश जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पुलिस अब उस दयाल पांडे के साथ कैसा व्यवहार करेगी।
हाँ, ये लो नीलम दीदी, ये 40 बोतलें जूस की और ये 2 जैम।
अरे वाह, मधु तो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, पर वो आज खुद क्यों नहीं आई?
वो क्या है ना दीदी, आज उनकी परीक्षा है और वो परीक्षा देने हरिद्वार गई हैं।
देखना छुटकी, एक दिन ये लड़की सचमुच कुछ कर दिखाएगी।
दीदी।
हाँ छुटकी बोल।
मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ाई तो मेरी छूट गई, लेकिन फिर भी मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ।
मतलब?
मतलब ये कि अब मैं भी मधु बौजी की तरह खुद अपना काम करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे भी अपने महिला मंडल में शामिल कर लें तो।
छुटकी, मैं तुझे अपने महिला मंडल में शामिल तो कर लूं, लेकिन एक शर्त है।
शर्त?
हाँ, और शर्त ये है कि तुझे एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी, तभी तू महिला मंडल में शामिल हो सकती है।
दीदी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूँगी। पर दीदी, एक बात और भी है।
क्या?
मुझे जैम और जूस बनाना तो मधु बौजी ने सिखा दिया, लेकिन आपको मुझे अचार और पापड़ बनाना भी सिखाना होगा।
चिंता मत कर, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे काम सिखा दूंगी मैं।
भगवान ने चाहा तो जल्द ही दयाल पांडे पुलिस की पकड़ में होगा।
भगवान करे ऐसा ही हो।
अरे आप सब लोग आ भी गए।
हाँ कविता, हमने FIR दर्ज करा दी है और जल्दी ही पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू कर देगी।
चलो अच्छा है। अच्छा राजेश, हमें कल गांव के लिए भी निकलना है, अब हमें चलना चाहिए, जाने की तैयारी भी करनी है।
आप लोग कल गांव जा रहे हैं?
अरे चंदर, कविता ने तुम्हें बताया नहीं, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और इसीलिए कल शाम की ट्रेन से गांव जा रहे हैं।
ओहो, मुबारक हो आप दोनों को। वैसे राजेश जी, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या हम दोनों भी दिल्ली तक आपके साथ चल सकते हैं?
लेकिन चंदर, फिर तुम्हारी मुंबई वाली 50,000 की नौकरी।
बस राजेश जी, अब और नहीं। मुझे समझ आ चुका है कि लोगों को ऐसे झूठे विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
बापूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा मुझे
अरे
छोड़
अरे
दो।
अरे आप शाहरुख खान के डायलॉग्स क्यों बोल रहे हैं नवीन?
इसलिए अंजलि, क्योंकि शाहरुख खान मेरे रोल मॉडल हैं और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ।
अरे रोल मॉडल से याद आया नवीन, कि हम अपने श्रोताओं से पूछने वाले थे कि क्या उनकी जिंदगी में भी कोई उनका रोल मॉडल है जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, जिसकी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो दोस्तों, आपने मेरा तो रोल मॉडल जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं।
मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी पापा हैं। आज उनकी बदौलत मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करके एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ।
मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता है। मेरे माता पिता मुझे सच्चाई की राह पर चलना सिखाते हैं और किसी से डरना नहीं सिखाते।
मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी है। उन्होंने उत्तरांचल क्षेत्र में खुद की एक ऐसी पहचान बना रखी है और मुझे उस काबिल बना दिया है कि मैं भी खुद की एक पहचान बना सकूं।
मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पति हैं, जिन्होंने मुझे हर मुश्किलों में चलना सिखाया है और हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया है। जब भी मैं दुखी होती थी, मुझे हर दुख से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करते थे।
मेरे जीवन में मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
तो दोस्तों, श्रोताओं के विचार हम तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी संवाददाताओं और आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन का बहुत बहुत धन्यवाद,
जिनके कारण इतनी महत्वपूर्ण बातें मनोरंजन के साथ श्रोताओं तक पहुंचती हैं।
और धन्यवाद देना चाहेंगे हम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस का भी,
जिनका इस कार्यक्रम के निर्माण में अहम योगदान है।
और दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी एक जरूरी बात, और वो ये है कि STI का इलाज संभव है, और इसकी मिसाल है हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने समय रहते STI का पूरा और पक्का इलाज करवाया और आज वो एक सुखी जिंदगी जी रहे हैं।
तो भाई और बहनों, आइए सुनते हैं उनके साथ हुई हमारी खास बातचीत।
नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सुरेश कंडवाल जी के साथ हुई हमारी छोटी सी बातचीत को। आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम सुरेश कंडवाल है, मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम कैनू टल्ला है। मैं दिल्ली में 15 साल से रह रहा हूँ।
तो सुरेश जी, आपने किन लक्षणों के कारण डॉक्टर से संपर्क किया?
मैं थोड़ा परेशान था, मेरे लिंग में खुजली होने लगी थी, दाने दाने आने लगे थे। ज़्यादा होने के बाद मैं डॉक्टर से संपर्क किया। फिर मैंने
तो आपको कैसे पता चला कि आपको STI हो गया है?
जब मैं डॉक्टर पास पहुंचा तो उसने बताया कि मेरे होस्ट सिफिलिस हो गया है, जो एक गुप्त रोग है। तब मेरे को पता चला कि यह STI रोग गुप्त रोग है, पर डॉक्टर के संपर्क में रहने से मेरी परेशानी दूर हो गई।
तब आपने किन किन सावधानियों का ध्यान रखा?
मैंने सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, साथ ही मैंने कंडोम का प्रयोग भी किया था, जो मेरे लिए काफ़ी लाभदायक हुआ।
अंत में आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे?
हाँ, मैं श्रोताओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप इस STI बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं और निसंकोच इस बीमारी से छुटकारा पाएं।
आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए, ओ जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए।
अरे नवीन, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं?
क्या बताऊं अंजलि, मैं देश की अनेक समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी हूँ।
नवीन, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमी हमारे लोगों में ही है, जिसमें ऊंचे पदों पर आसीन कई पदाधिकारी प्रणाली के लचीलेपन का फायदा उठाते हैं और आम आदमी उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता।
लेकिन अंजलि, ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे ये पता चल सके कि वो कौन है जो अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं देते।
एक तरीका तो है।
वो क्या अंजलि?
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट।
मतलब
आप RTI यानी कि सूचना के अधिकार के बारे में नहीं जानते?
नहीं अंजलि।
तो आज काम की बात में हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI के बारे में। दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना के अधिकार का अधिनियम सन 2005 में संसद में पारित किया गया। इस अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, फिर चाहे वो विभाग शिक्षा का हो या फिर धन संबंधी विभाग यानी के आयकर विभाग।
लेकिन अंजलि, क्या ये अधिकार पूरे देश में लागू है?
नहीं नवीन, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम सुरक्षा संबंधी विभाग और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता।
पर हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
देखो नवीन, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन यानी के इंटरनेट के द्वारा, और इसके लिए आपको www.cic.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप अपनी एप्लीकेशन और उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
और दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका है कि जिस भी विभाग से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं ना, वहां आपको सूचना के अधिकार से जुड़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा, जिसकी कीमत होती है मात्र 10 रुपए।
और हमें जानकारी कितने दिनों में मिल जाएगी?
एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने के 30 दिनों के भीतर संबंधित विषय से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। साथ ही आप निर्धारित अधिकारी, जो कि आपको संबंधित विषय की जानकारी देने से मना करता है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।
वाह अंजलि, ये तो बहुत आसान उपाय है जिसमें पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते और हम किसी भी जानकारी को आसानी से पा सकते हैं।
बिल्कुल नवीन। और दोस्तों, अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। नंबर है 9197176782223।
चल दो छोरी मेरा पहाड़े गाँव, चल दो छोरी मेरा पहाड़े गाँव, दे बातों की भूमि वके हरी बारी डांडियो माँ, दे बातों की भूमि वके हरी बारी डांडियो माँ। जख हिमालय की कांठी, बांजीपुरा से की डाली ठंडो ठंडो पानी, रौत्याला पहाड़ मंग मौज बहारे, बार महीना मास रंदा बार बे त्योहारा, जकबदरी चाक्या दार, जकबदरी चाक्या दार, पंच नाम देवताओं की महिमा अपार, पंच नाम देवताओं की महिमा अपार,
देवताओं की भूमि वक्त हरी भरी डांडमा।
कामना खिली रांदी प्योली बांध पूरा से की डाली जनी दिखी दी प्योली झुण झुण पर था जनी सोने की गुरेड़ी गाड़ी गाड़ी न्यो को पानी हरी भरी सेरी ठंडो ठंडो पानी जाखा ठंडो ठंडो पानी जाखा बार में ना मासिरनी बाहर बेवक बार में ना मासिरनी बाहर बेवक
देवतों की भूमि वक हरी भरी डांड मा
चिट्ठी की तरफ और आज के विजेता हैं विक्रोली मुंबई के रमेश पांचाल। नवीन हमारे आज के विजेता ने हमारे सभी सुनने वालों के लिए महंगाई से निपटने के कुछ सुझाव लिखकर भेजे हैं। ये लिखते हैं कि जमाना दिन ब दिन कठिन हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे वक्त हम संभल कर कैसे जीवन जिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है आमदनी नहीं बढ़ती, इससे बचने के लिए एक ही राह है, सादगी भरा जीवन। आज हर इंसान को जरूरत है अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करने की। बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, खाने पीने का सामान, ये वो खर्चे हैं जो हमें करने ही हैं। मगर हम जहां दूसरों को देखकर अपना खर्च बढ़ाते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। दिन भर टीवी ऑन रखना, महंगे मोबाइल फोन खरीदना और फोन पर लंबी चौड़ी बातें करना, ये बिल्कुल गलत है। आगे ये लिखते हैं नवीन के सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बात मन से निकाल कर उतना ही खर्च करें जितनी हमारी आमदनी है और अपने बेहतर भविष्य के लिए दो पैसे बचाएं। मैं इतना ही सबसे कहना चाहता हूँ कि फिजूल खर्च कम करके पैसा बचाना ही पैसा कमाना है।
रमेश जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छे सुझाव लिखकर भेजे, जिन्हें पढ़कर मुझे वो कहावत याद आ गई कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। फिलहाल आपको इस चिट्ठी के लिए दिया जा रहा है एक प्यारा सा ट्रेवल बैग। और दोस्तों, रमेश जी की तरह आप भी ऐसे ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
और चिट्ठियाँ आपको जिस पते पर भेजनी है वो हम आपको बता देते हैं। कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और हाँ भाई और बहनों, इसके अलावा आप हमें अपने खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं।
हमारी ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
पटेला टेप सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा।
रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का।
और दोस्तों, अब बारी है आज के संदेशों की, लेकिन उससे पहले एक ईमेल जो हमें भेजा है दीपक ध्यानी ने गुड़गांव से। ये लिखते हैं कि मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, मैं पहले दिल्ली में, फिर मुंबई में और अब गुड़गांव में रहता हूँ। मैं जिंदगी में बहुत धक्के खा चुका हूँ। मैं बहुत गरीब घर से हूँ और इंटर तक पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर सीखा और जॉब करने लगा। मैं दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। उसके बाद मुंबई गया और वहाँ एक कंपनी में अकाउंट्स में काम करने लगा। अब मेरा ट्रांसफर गुड़गांव में हो गया है। मेरी अभी की जॉब थोड़ी ठीक है। जितना भी कमाता हूँ उसका थोड़ा हिस्सा घर भेज देता हूँ और थोड़े से मैं अपना काम चलाता हूँ। दीपक ध्यानी जी आगे हमारे प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं कि हमें अपने नाटक चले शहर की ओर के समय को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए।
दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। और अंजलि अब बढ़ते हैं हम अपने आज के संदेशों की तरफ।
मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली मिठापुर में रहती हूँ। मैं ये संदेश कोटद्वार अपनी सहेली दिमंती को देना चाहती हूँ, जो कि कोटद्वार में अकेली रहती है, उसके हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, इसलिए मैं उसको कहना चाहती हूँ। और कैसी है, तो बच्चे का ख्याल रख रही नहीं रख रही है, और उधर गर्मी वर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, और अपने बेटे का और अपना अच्छे से ध्यान रखना।
हेलो, मैं दिल्ली मिठापुर बटी अनिता नेगी बोनो छो, और यू संदेश मेरी रेणु दीदी कर से, जो कि पौड़ी गढ़वाल में रहती। हेलो दीदी नमस्ते, क्या हाल चाल जी, घर में सब लोग का ना जी, जीजा जी और आपका सास ससुर अनन गुड़िया, दीदी भगवान करे सब लोग ठीक ही भैया, यहाँ भी सब लोग ठीक ही जी। और अब हाजी ब्याह उड़ो तो घर, तब हम घर वाला मई जून में, तब आप जरूर आइए, तब मैं आपसे जरूर मिलूँ। और दीदी अपन ख्याल रखे और घर में भी सभी ख्याल रखे, और बाकी सबको मैं नमस्ते बोल दिया। नमस्ते,
मैं दिल्ली मीठापुर से सोनम बोल रही हूँ। ये संदेश मैं अपने नाना को देना चाहती हूँ, जो गढ़वाल में रहते हैं। नाना जी और नानी जी नमस्ते, आप सब कैसे हैं? हम लोग भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं, और शुभम के भी पेपर हो गए होंगे, और आपको नमस्ते कहना चाहती हूँ। नमस्ते,
मेरा नाम सतीश रावत है, मैं यहाँ संदेश अपने गांव में अपनी मम्मी के लिए भेजना चाहता हूँ। माँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और मैं मई में घर आ रहा हूँ।
चल चले अपने घर, ऐ मेरे हम सफर, बंद दरवाजे कर हम सफर, चल चले अपने घर हम सफर।
तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये दिल को छू जाने वाले संदेश? अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक या किसी ऐसे इंसान तक भेजना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद खास है, तो इसके लिए अपना फोन उठाइए और अपना नाम और पता हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी खास जानकारी है जिसे आप हमारे बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप वो जानकारी चिट्ठी अथवा ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं।
साथ ही दोस्तों आप हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव भी भेजते रहिए।
हमारा ईमेल एड्रेस और पता एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और हमारा पता है
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
अंजलि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, और जाने से पहले आपको और अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि नरेन जल्द ही वापस आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि 2 हफ्तों का मेरा ये साथ आपको पसंद आया होगा।
बिल्कुल नवीन, आपके साथ गुजारा वक्त बहुत अच्छा रहा, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। अभी के लिए अपने सभी श्रोताओं से इजाजत लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।